गौरनिधारी भगवान की, श्री श्री गौरनिथाई की, श्री गणपति देव जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। कोई बात है, ठीक है। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा रानी की। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है, आप लोग इस दिन शाम को यहाँ पर इकट्ठा हुए, वीक डे पे, फेस्टिवल टाइम पे। आपको सबको पता होगा ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित करते हैं। ये गंगा नर्सिंग होम में हमने स्पिरिचुअल केयर ये विभाग शुरू किया है, उसको भी 2 साल पूरे हो गए। और इसमें जो मरीज हमारे यहाँ पर एडमिट होते हैं, उनको इलाज करते करते भगवान के विषय में भी जानकारी देते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग अलोंग विथ फिजिकल हीलिंग, शरीर को ठीक करते करते आत्मा के लिए भी कल्याण के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। तो ये 20 साल से कार्य चल रहा है हमारा। तो इसी के दौरान जो हमारे पेशेंट होते हैं, वो कभी एडमिट हैं या कभी डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उनको हम बुलाते हैं और उनके साथ में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। उसका नाम है प्रेमांजलि। तो प्रेमांजलि में भगवान का प्रेम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो आपका धन्यवाद है कि आप आए इस कार्यक्रम के लिए। आमतौर पर यह हॉल फुल रहता है उसके लिए, लेकिन आज संडे का दिन भी नहीं है और पहले फेस्टिवल भी चल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। हमारे प्रभुपाद जी एक बार, उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया था फॉरेन कंट्री में और बहुत बड़ा हॉल बुक किया था, कम से कम 1000 सीट थे। उतने इन्विटेशंस दे दिए थे लोगों को, सारा इंतज़ाम किया था और इतने बड़े हॉल में केवल 8 जन प्रोग्राम में आए। सोच सकते हैं आप इसको, श्रील प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं हम, 8 जन केवल आए। तो लोग बहुत, जो शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो थोड़े दुखी थे, अभी प्रभुपाद जी को क्या दिखाएंगे मुँह अपना, हाउ कैन वी शो आवर फेस, क्योंकि इतना बड़ा इंतजाम किया और कोई आए ही नहीं लोग। तो जो प्रभुपाद जी के भक्त थे वो थोड़े दुखी थे कि हमने प्रभुपाद जी के लिए, इतने बड़े संत के लिए ऑडियंस फुल नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी एकदम विरुद्ध, टोटल डिफरेंट भाव में थे। उन्होंने कहा कि 8 जन आए हैं ये आप भूल रहे हो। आप कितने जन नहीं आए उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन 8 जन आए उसके बारे में नहीं भूल रहे हो। इस भौतिक दुनिया में अगर हम लोग समझो अभी बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, ये प्रोग्राम के एंड में वो कुछ हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप करेंगे, उसके एंड में 1 करोड़ रुपया मिलेगा सबको, तो ये हॉल तो क्या है, 3 मंजिल CCTV लगा के फुल हो जाएंगे। या और कुछ कहेंगे समझो, कोई शाहरुख खान आने वाला है तो किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मत आओ बोलना पड़ेगा, अरे बस हो गया अभी आपके लिए नई इन्विटेशन है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन भगवान के विषय में कुछ करेंगे तो ना पेपर में खबर आएगी, ना कोई आएगा उसके लिए, किसके लिए भी नहीं आएगा। इसी को हम लोग कलयुग कहते हैं, है ना। जिसमें हमारा कल्याण है उसमें लोगों को रुचि नहीं होती है, और जिसमें हमारा कुछ भी कल्याण नहीं है, उल्टा है, नुकसान है हमारा, उसमें बहुत लोगों को रुचि होती है, बहुत उत्सुकता होती है उसमें भाग लेने के लिए। तो फिर भी जो कहते हैं ना, जो भगवान के आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, भगवान की सेना के जो सैनिक हैं, वो फिर भी अपना काम नहीं छोड़ते। मुझे कहानी याद आती है, एक लड़का था, वो समुद्र किनारे पे ऐसा घूम रहा था, तो बहुत सारी लहरें आ रही थी समुद्र की, बहुत सारी लहरें आ रही थी, विदेश की बात है ये, तो वो बहुत सारी लहरों में से बहुत सारे स्टार फिश, जानते हैं आप स्टार फिश, कभी देखा है? वो स्टार फिश ऐसे किनारे पे आते थे, ऐसे वो मर जाते थे, समुद्र की लहरें उनको जो बाहर फेंकती थी तो वो मर जाते थे। तो वो लड़का क्या करता करता था, एक लहर में अगर समझो 500 स्टार फिश बाहर आ गए तो वो दो चार पांच उठा के वापस दूर पानी में फेंकता था। उतने में और एक लहर आती थी, और 400-500 आते थे स्टार फिश मरने के लिए। फिर उसमें से 4-5 जितना भी उसको हो सकता है अगले लहर आने के पहले, वो 10-15 जितना भी हो सकता है, अभी 5 उठाया 10 उठाया, अंदर पानी में फेंक रहे हैं। और ऐसे वो कई घंटे तक करता रहा। तो उसमें से एक आदमी था, वहां दूर से देख रहा था उसको, क्या कर रहा है ये लड़का। बाद में उसको रहा नहीं गया, फिर वो नीचे आया समुद्र किनारे और उसको बोला कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, इतने शार्क फिश यहां मर रहे हैं, दो चार लोगों को फेंक रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उनको, क्या फर्क पड़ता है उनको। तो वो लड़का कहता है जिनको मैं जल में फेंक रहा हूं वो शायद 4-5 ही होंगे या 10-15 ही होंगे एक लहर में, उनको 100% फर्क पड़ रहा है, बाकी लोगों को 0% लाभ है क्योंकि मैं उसको फेंक नहीं पा रहा हूं। लेकिन जिन मतलब 500 में से जो 5-10 मैं फेंक रहा हूं वो 5-10 को 100% लाभ हो रहा है, उनको जीवन दान मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत गहराई में फेंक रहा हूं। उसी तरह से भगवान के संत जो होते हैं ना, वो एक साथ में हजारों लोगों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हजारों लोग आते नहीं हैं अपना उद्धार करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर 5-10 भी आते हैं, 15 भी आते हैं, 20 भी आते हैं, एक भी आता है, तो भी भगवान का विषय में सत्संग होना चाहिए। प्रभुपाद जी तो यही कहते थे कि 8 जन नहीं भी आते ना तो भी मैं 4 दीवारों के लिए कथा करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही उसके बाद में। उन्होंने कहा जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर नारद मुनि आते हैं, वहां पर हनुमान जी आते हैं, वहां पर सुखदेव जी आते हैं, वहां पर व्यास देव जी आते हैं, तो कोई भी नहीं आएगा तो भी हम जब कथा कहेंगे तो सब लोग आ जाते हैं। ये विधान है शास्त्र का, जहां पर भी कथा होती है भगवान की, जहां पर भगवान के विषय में चर्चा होती है वहां पर ये विशेष संत जो हैं वो आ जाते हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, अभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हरि कथा शुरू हो जाएगी वो आ जाएंगे। इसलिए कभी कभी हमारे घर में समस्या होती है तो हम लोग वो कथा आजकल ना FM में सुनते हैं, वाईफाई में, इंटरनेट में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं। तो घर में कोई बीमार है, कोई डेथ बेड पे है तो उसको छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो अभी मंदिर में FM का व्यवस्था भी किया है, एक नंबर दिया है, या लाइव फेसबुक होता है या लाइव यूट्यूब ऑनलाइन उसका ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो लोग बहुत दूर दूर के बैठ के भी सुनते हैं उसको जो मंदिर में जाते नहीं है। तो मजबूरी की बात है, ठीक है आप जा नहीं पाते हैं इसलिए घर में सुन रहे हैं, लेकिन अगर जा सकते हैं तो जाना ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में और फेसबुक लाइव में व्यासदेव जी नहीं आते, नारद मुनि नहीं आते, वो जहाँ पर वो क्या कहते हैं ना फिजिकल वास्तविक कथा हो रही है वो वहाँ पर आते हैं, आपके साथ में यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं आते हो। सत्संग की बड़ी महिमा है, और मनुष्य जीवन जो हमारा है वो सत्संग के लिए ही दिया गया है, बाकी कोई बिजनेस नहीं है इसके अंदर, बाकी सारा बिजनेस शरीर का है, शरीर को पालना है तो भोजन भी देना है उसको, बीमार पड़ेगा तो दवा भी देनी है, तंदुरुस्त रखना है उसको वो, लेकिन जीवन का मेन मिशन नहीं है। हम लोग सब लोग सोचते हैं कि बच्चा जन्म देंगे तो उसको बड़ा करना चाहिए, फिर उसको अपने पैर पर खड़ा रखने के लिए योग्य बनाना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए उसको, तंदुरुस्त शरीर देना चाहिए उसको, भोजन खिलाना चाहिए, बेस्ट बेस्ट चीज़ देनी चाहिए, और बेस्ट बेस्ट चीज़ देखे उससे क्या उम्मीद है कि वो भी अपने अपने जीवन में अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें खुद को दे सकें। बाद में पूछेंगे ये सब क्यों कर रहे हैं आप, कुछ नहीं, ये इसीलिए तो कर रहे हैं, जिनको जन्म दिया है उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है, फिर वो किसी और को जन्म देंगे उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। लेकिन आप बहुत गहराई से सोचेंगे तो जानवर लोग भी यही करते हैं, इज इट नॉट ट्रू, एनिमल्स क्या करते हैं, वो खुद बच्चे होते तो अपने माँ पे डिपेंड रहते हैं, जब बड़े होते तो खुद बच्चे पैदा करते हैं उनको अपने ऊपर पालते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर दूसरे वाले जो है वो जवान होकर अपने बच्चों को पालते हैं, फिर वो कभी एक दिन मर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जीवन केवल इसी के लिए है? जो कुत्ता कुत्ता बिल्ली हाथी पंछी मछली कर रहे हैं वो उसके लिए हमको दिया जन्म? मतलब अगर भगवान पर श्रद्धा नहीं भी होती हमारे, समझो, तो भी अगर लॉजिकली हम सोचेंगे ना, तर्क दृष्टि से, तो भी ये कुछ बात जस्ती नहीं है। कितने से काम के लिए हमको यहाँ पर इतना बड़ा जीवन दिया है, इतनी बड़ी बुद्धि दी है, इतना साइंटिफिक माइंड दिया है, कितनी बड़ी बात है। वो बुद्धि जो है वो जानवरों के पास नहीं, वो हमको दी दी है। हाँ, जानवरों को वाचा नहीं दी है, हमको वाचा भी दी है उन्होंने। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो जिस तरह से अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, वैसे कुत्ता आपसे नहीं बोल सकता है, एक तोता आपसे नहीं बोल सकता है उस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप मुझसे बात करेंगे। और कितनी भाषा दिया है भगवान ने दुनिया में, हर एक भाषा अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। हर 100 किलोमीटर भाषा बदल जाती है और लोग अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। फिर इंसान डांस कर सकता है, इंसान गीत गा सकता है, इंसान भोजन बना सकता है चूल्हे पर। कोई जानवर के लिए किचन दिया है क्या भगवान ने? हाँ, कुत्ता और कुत्ती रहते हैं और कुत्ती वो कुछ रोटी बना रही है, कुत्ता खिला रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। नहीं, केवल ह्यूमन बींग के लिए है। तो जरूर अगर हमारे लिए भगवान ने इतना सारा फैसिलिटी दिया है जो बाकी जानवरों को और जीव को नहीं दिया है, तो कुछ उसका जरूर हायर उद्देश्य होगा ना कुछ, या वही होगा पेट पालने का उद्देश्य? नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉजिकली भी ये बात हमको जचती नहीं है। तो उत्तर उसका शास्त्र में दिया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो मनुष्य के लिए ही शास्त्र दिया है, स्क्रिप्चर, और किसी के लिए स्क्रिप्चर नहीं दिया है। कोई सत्संग जानवरों में नहीं होता है, सत्संग केवल इंसानों के लिए होता है, बराबर है ना? इंसान और देवताओं के लिए होता है, मनुष्य योनि देव योनि के लिए होता है बस। बाकी इस सब के लिए खाली क्या चीज है? आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीजें खाली बस। देखिए आप बराबर सोच के देखिए, दिन भर में हम क्या करते हैं? आहार, आहार के लिए मेहनत, फिर निद्रा, सबके लिए सोना जरूरी है, और सुरक्षा, जो भी हमारे पास है उसको बचा के रखना है। अपने अपने तरीके से बचाते हैं हम लोग। कोई लोग बॉम्ब रखते हैं, कोई लोग बंदूक रखते हैं, कोई लोग सिक्योरिटी रखते हैं, कोई लोग ताला लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अपना तरीका है। कोई डंडा रखते हैं, जो भी अपना सिस्टम है। तो सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है मैथुन, यानी प्रजा उत्पत्ति। मैं हूँ तो मेरे जैसा कोई होना चाहिए, तो फिर आगे वो प्रजा प्रजाति जो जाति जो है वो चलती रहेगी, मनुष्य जाति, स्पीशीज विल कंटिन्यू, है ना? तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज़ें हम सब लोग करते हैं, लेकिन चार चीज़ों के लिए ही ये ज़िंदगी नहीं दिया है। इसके पीछे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, और वो है सत्संग, और वो है शास्त्र, और वो है भगवान। और अभी गणेश उत्सव चल रहा है, फिर नवरात्रि आएगी, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। किसके लिए? ये जानवरों के लिए है? नहीं, केवल इंसान के लिए। ऑल द फेस्टिवल्स, ऑल द स्क्रिप्चर्स, जितने शास्त्र हैं, नॉलेज हैं, हर प्रकार का नॉलेज है, वो किसके लिए? केवल मनुष्यों के लिए। हर कला का नॉलेज केवल मनुष्यों के लिए है। जैसे गायन, नृत्य, बाजा, वादन, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है या गाना है या नृत्य करना है, मनुष्य ही कर सकते हैं। और जानवरों को कुछ ट्रेनिंग देंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जैसा इतना सुंदर नहीं कर सकते, इतना फाइन नहीं कर सकते। तो मैं आपको भी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हाँ, रियल कहानी है, उत्सव के विषय में है। क्योंकि हम सब लोग, जितने मनुष्य जितने देश में रहते हैं, सब लोग फेस्टिवल मनाते हैं ना। हमारा देश तो फेस्टिवल का होलसेल मामला है। हाँ, बाकी देश में तो एक दो, क्रिश्चियन वर्ल्ड में एक खाली साल के एंड में, मुसलमान वर्ल्ड में दो, एक बकरीद और एक रमज़ान ईद, उसके बाद में कुछ नहीं। फिर भी इंडिया में और कुछ है, मुहर्रम है, कुछ और कुछ होता है, दो चार चीज़। लेकिन भारतवर्ष में आप देखेंगे जितने प्रकार के धर्म हैं, वो हर एक प्रकार के अनंत उत्सव है उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा उत्सव हिंदुओं में, ऐसे आंख बंद करने के खोलने के पहले दूसरा उत्सव शुरू होता है। है ना? हम लोग एक उत्सव की तैयारी करते हैं, फिर उत्सव तैयारी करने के बाद उत्सव करते हैं और उसके बाद में समाप्त हो गया तो तुरंत दूसरे उत्सव की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही गणपति हो गया तो अभी क्या करते हैं, उसके बाद में पितृपक्ष की तैयारी करते हैं, श्राद्ध करना है, ये करना है, वहाँ जाना है, नासिक जाना है, किसी को गया जाना है, काशी जाना है, वो खत्म खत्म होते होते ही नवरात्रि का घट स्थापना करना है। फिर 9 दिन का उत्सव है, 9 देवियों का पूजन करना है। फिर 10वें दिन रावण का वध हुआ तो श्री रामचंद्र विजय उत्सव मनाना है। उसके कुछ ही दिन के बाद में क्या होता है, दीपावली। और दीपावली एक नहीं है, दीपावली एक उत्सव, दीपावली ऐसे उत्सवों का एक समूह है, इट्स अ कन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी फेस्टिवल टुगेदर। एक फेस्टिवल नहीं, एक 4 दिन के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, हर एक का अपना अपना महत्व है, हर एक की अपनी अपनी पूजा है, अपने तरीके से उसको मनाते हैं, अलग अलग तरीके से। तो ये उत्सव हमारे लिए क्यों दिए भगवान ने, कोई आइडिया आपको, क्या विचार है आपके, बताइए क्या लगता है आपको, ये उत्सव क्यों दिए हमको भगवान के बारे में जानकारी करने के लिए, और बताइए। सब लोग साथ में मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बताइए। हाँ, भगवान को भूले नहीं, इन्होंने कहा जानना चाहिए भगवान के लिए, आप कहते हैं भूलना नहीं चाहिए, सब दोनों सही है, और क्या होता है फेस्टिवल का उत्सव रीजन। हाँ, हैप्पीनेस, आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। उत्सव ऐसा होता है क्या, सब दुखी बैठे हुए हैं, दुखी होकर प्रसाद पा रहे हैं, दुखी होकर आरती कर रहे हैं, बाप रे कितना कष्ट है इसमें ऐसा होता है, एवरीबडी इज हैप्पी। अगर आप नहीं भी हैप्पी होंगे तो उत्सव में आते ही आप हैप्पी हो जाते हैं, कितनी बड़ी भेंट है भगवान की ये। तो साथ में आना जो है ना, ये क्योंकि हम लोग कभी, सब लोगों को अपने पेट को चलाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, अधिक से अधिक समय जाता किधर, ऑफिस में जाता है, दुकान में जाता है, बिजनेस में जाता है, कोई प्राइवेट बिजनेस है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कम से कम 8 घंटा तो सबको काम करना ही पड़ता है। कोई भाग्यवान होगा तो घर में बैठ के 2 घंटे में काम कर लेता है, फ़ोन करके यहाँ से पैसे घुमा लेता है, फिर हो गया। कोई घर में से अपना कंप्यूटर चलाता है, वो काम कर लेता है। तो कुछ लोग ऐसे भाग्यवान, कलयुग में देखते हैं क्या, बहुत सारे लोग बहुत घंटे काम करते रहते फिर भी उनके घर का हिसाब किताब पूरा नहीं होता है। जैसे ही बेटी थोड़ी बड़ी, बेटी को भी काम को भेजते हैं, 4-4 जन काम कर रहे हैं, 4 लोग परिवार घर में है, 4-4 काम करते हैं, फिर भी उनका एक्सपेंसेस पूरा नहीं होता है ऐसा जीवन बन गया है कि क्या करें, इतने इतने मोबाइल्स, इतने इतने टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, कितनी चीज़ें हैं आजकल खर्चे वाली, तो पहले से कभी बचपन में हमारा नहीं थी। एक गेंद दे दिया, बस एक गेंद 4 बच्चों में खेल सकते हैं आराम से, वो 4 बच्चों को 4 मोबाइल चाहिए और हर एक का कीमत 10-10 हज़ार रुपये है, फिर भी दिल नहीं भरता उसके अंदर, क्या क्या चालना है उसको ऐप उसके अंदर, ये कलयुग का लक्षण है। तो ये सब समझ जाता है हमारा इसमें, तो उत्सव के बहाने हम लोग साथ में आते हैं, है ना। वे आप कहेंगे दिवाली है, दिवाली है, मम्मी के घर में जाना पड़ेगा सबको, सबको वहाँ पर इकट्ठा होना है। अरे भैया दूज है अभी, सब भाई और बहन इकट्ठा होने वाले हैं, उसके बहाने हम भी इकट्ठा होने वाले हैं, हम हमारे भाई बहन और आपके लेवल पर आपके भाई बहन, मतलब सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सब लोग मिलकर फिर आते हैं, उत्सव मनाते हैं, प्रसाद खाते हैं, आनंद बनाते हैं, गीत गाते हैं, कभी डांस करते हैं। उत्सव की एक व्याख्या है शास्त्र में लिखी है, उत्सव में डांस किए बिना उत्सव पूर्ण नहीं होता है। म्यूजिशियंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग और डांसिंग, ये जब नहीं होता है तब तक उत्सव पूरा नहीं होता है। आप शांति से आए, आरती किया, कोई खड़े रह गए, रोटी पाया, लड्डू खाया, चले गए, तो उत्सव हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिला आपको। तो ये जो साथ में आने का जो पर्पज है ना उत्सव का, उसके मैं एक सुंदर कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था महाराष्ट्रियन, उसके घर में पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और हर साल गणपति आता है घर में उनके। तो एक साल जब गणपति आया तो अच्छा हुआ, सब उत्सव स्थापना हो गया, सब हो गया, लेकिन विसर्जन करने के दिन वो जो पिताजी थे जो मेन घर के, वो फिसल गए, उनका पैर को चोट आ गई। अभी वही गणपति उठाते हैं और वही उनको ले जाते हैं समुद्र के अंदर बोट में बिठा कर, उनको अंदर जाकर विसर्जन करते हैं और लौट के आते हैं, तभी उनका पैर में तकलीफ है, अभी उनको व्हीकल चाहिए, तो उस समय तो इतना समृद्धि नहीं थी उनके पास में, क्या करें, अभी बच्चा छोटा है, वो थोड़ी गणपति उठा सकता है। और कोई है नहीं घर पे, अभी ऐन मौके पे हुआ है। अभी पहले होता था तो 2 दिन पहले तो किसी को मामा चाचा को बुला लेते थे, वो भी नहीं है अभी, अभी समय आ गया है। तो पापा कहते हैं जो जो जख्मी हो गए वो कहते हैं कि ऊपर हमीद भाई है, सलमान है, उनका टेम्पो का बिजनेस है, जा रहा हूँ उनको पूछ के आओ कि दे सकते क्या टेम्पो आज के दिल्ली। तो लड़का गया बोलने के लिए उनको, तो लड़का गया तो मम्मी को मालूम नहीं था, मैंने बहुत चिड़चिड़ किया, क्यों उसको बोला आपने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, तब तक तो जाके बोल के आया था। और हमीद मैंने बोला अरे क्या प्रॉब्लम है, जरूर आऊंगा मैं, टेम्पो क्यों, अगर बोलेंगे तो कंधे पे उठा के ले जाऊंगा गणपति को। तो उनको तो आश्चर्य हो गया और मम्मी को भी संकोच हो गया, मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा, लेकिन वो तो इतने दिल से तैयार हो गए। तो फटाफट आ गए, अपना काम छोड़ा उन्होंने, चाबी गाड़ी की लेके आए, टेम्पो भी खड़ा कर दिया, तो और वो उन्होंने खुद गणपति उठाया क्योंकि इनका तो पैर में तकलीफ है। तो सब भी बारात निकली, गणपति बापा मोरिया विसर्जन पुरचा और सिलाव करिया, और टेम्पो में बिठाया, और वो उन्होंने ही विसर्जन किया क्योंकि ये तो खाली बैठे रहे, उनको कुछ नहीं करने कर नहीं पाए। तो वापस लौट के आए ना हम लोग, पता कर क्या करते हैं, वो जहाँ पर उनको करते हैं ना विसर्जन, वहाँ की मट्टी को लेकर आते हैं और वो पाट पर रखते हैं और वो पाट को लास्ट की पूजा करते हैं। तो जब ये सब लोग लौट के आए और आखिरी पूजा हुई, तो जो मम्मी थी उन्होंने उनको पूरण पोली और मोदक दिया और कहा कि आप डिनर खा के ही जाओ। तो डिनर भी दिया और पूरण पोली मोदक भी दिया। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमीद भाई को लगा कि ये मुझे ही करना चाहिए हर साल। अगले साल तो वो गिरे नहीं, अगले साल तो पैर ठीक था उनका, लेकिन फिर भी वो आए, उन्होंने कहा कि मैं विसर्जन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने प्रेम से उनको हाँ कर दिया, फिर टेम्पो से विसर्जन किया, फिर पूरण पोली मोदक और डिनर का इंतज़ाम हुआ। ऐसे करते करते ना 26 साल गए, हर साल हमीद भाई इनका गणपति का विसर्जन करते थे। वो 26 साल के हो गए तो ये जो पिताजी थे वो गुजर गए। तो पिताजी गुजर गए फिर भी हमीद भाई आए, उन्होंने गणपति का विसर्जन किया, लेकिन भोजन नहीं किया, केवल मोदक लिया और चले गए। जब पिताजी जीवित थे तो अमित भाई का इनका प्रेम हो गया था, तो पिताजी बोलते थे अरे क्या अमित भाई मोदक के लिए आते हैं, हाँ गाड़ी गाड़ी तो लेके आते लेकिन वो उनको मोदक चाहिए इसलिए वो गाड़ी लेके आते हैं, ऐसा मजाक करते थे। तो फिर क्या हुआ, पिताजी गुजर गए लेकिन अमित भाई का जो, जल्दी जल्दी बैठिए आप, पिताजी गुजर गए लेकिन अमित भाई का सेवा चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन हमीद भाई भी गुजर गए, अभी तो 26 साल में तो जवान आदमी बुढ़ा हो जाता है। तो एक दिन, अच्छा बीच में क्या होगा, बहुत सारे घर बदले हो गए, पहले छोटे से घर में थे वहाँ गणपति आता था, तभी फिर फ्लैट में गए, फिर दूसरे फ्लैट में गए, कई सारे एड्रेस चेंज हो गए, लेकिन सब जगह अमित भाई आते रहे, जहाँ भी एड्रेस चेंज हो गया वहाँ पर आते रहे। तो इनके घर भी दूर हो गए फिर भी वो अमित भाई हर साल आते थे। फिर वो पिताजी गुजर गए फिर भी अमित भाई आते रहे दूर से, और एक दिन पता चला कि अमित भाई भी गुजर गए। अभी इतना सालों से घर में रिवाज हो गया था कि अमित भाई आएंगे और विसर्जन करेंगे, अपनी गाड़ी से करेंगे, और पहली बार जब किया था ना तभी उनको पैसे देने का प्रयास किया था उन्होंने कि भाई आपका जितना भाड़ा होता है उतना दे लो, तो अमित भाई ने लिया नहीं उसको। उसके बाद कभी भी ऐसा प्रसंग नहीं आया कि उन्होंने देने की कोशिश किया और उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने देने का कोशिश करने का सवाल ही होता है, क्या लगेगा अमित भाई को, वो दुख होगा उनको। और ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि अमित भाई जिस प्रेम से गणपति विसर्जन कर रहे हैं उनको हम क्या दे सकते हैं, हमारी औकात ही क्या है कि उनका जो प्रेम का हम लोग मोल चुका सकते हैं, उस प्रेम का क्या मोल हो सकता है, पेट्रोल का टेम्पो का कुछ मोल होगा, लेकिन जिस प्रेम से वो आ रहे हैं वो प्रेम को कैसे हम मोल ले सकते हैं। इसलिए 26 साल तक केवल प्रेम से ही बातें चलती रही, किसी ने पैसे का इंतजाम बातचीत नहीं किया। और हमीद भाई गुजर गए, तो इसमें जो छोटा सा बालक था ना वो अभी बड़ा हो गया ना, पिताजी भी गुजर गए तो वो अभी घर का प्रमुख हो गया है, तो वो ना अभी उसके पास, खुद के पास भी गाड़ी है, अभी उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो खुद की गाड़ी में लेके अभी गणपति को लेके जा सकता है, लेकिन मन में इतना दुख हो रहा है, खुद गाड़ी हो तो क्या हुआ, वो तो हमीद भाई का अधिकार है, परंपरा से चलता आ रहा है, अभी हमीद भाई नहीं रहे तो उनको संकोच हो रहा है अभी कैसे विसर्जन करें, गणपति पापा भी निकलेंगे नहीं घर से जब तक हमीद भाई नहीं आएंगे। कैसे करें अभी? सब लोग ऐसे घर में ना, से स्तब्धता है, पूरा शांति है। एट द डे ऑफ विसर्जन सब लोग शांति से बैठे, ऐसे कोई किससे बात नहीं कर, सबसे मन में ही विचार चल रहे हैं, अमित भाई चले गए तो अभी कौन करेगा। उतने में माँ माँ कहती है, बुढ़ी अभी हो गई माँ, वो कहती है अरे आरती तो करो, अभी जाने का समय हो गया, अभी विसर्जन का समय हो गया, आरती करो। तो वो जो बात उनकी हुई ना, आरती तो करो, तो शांति भंग हो गई उसमें। तो सब लोग ऐसे उठे और फिर आरती शुरू किया। अभी क्या करेंगे भाई, वो लड़का कहेगा अभी तो अमित भाई तो नहीं है। लेकिन जब आरती समाप्त हो गई ना, तो घर के बाहर, जैसे आप बैठे थे ना वहाँ पर, ऐसे ऐसे घर के बाहर जीने के पास में एक जवान लड़का ऐसे आगे पीछे ऐसा अस्वस्थ रूप में खड़ा है ना, लाइक डिस्टर्ब नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हाँ इज जस्ट लाइक रेस्टलेस, ऐसे बाहर वो खड़ा है। फिर जैसे ही आरती हो जाती है, उसको पता है कि आरती होने के बाद लास्ट वाली गणपति को उठा के ले जाएंगे, तो वो आगे आता है, कहता है मौसी जी मैं अमित भाई का बेटा हूँ, और अब्बा ने मुझे कहा था कि मैं नहीं भी रहूँगा ना कभी, तो आपको जाके अप्पा का गणपति का विसर्जन करना है। तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे अमित भाई चले गए, फिर भी उन्होंने बता के गए, मतलब जब भी घर में उनको लिए, ये अमित भाई के बच्चे कभी नहीं आए थे, अमित भाई आते थे, लेकिन कई सालों से बच्चे को बता के रखा था कि मैं गया ना था, फिर भी आपको जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे भी संकोच हो रहा था कि आपको कैसे पूछूं, लेकिन पिताजी ने कहा था ये हमारी परंपरा है, ये हम अप्पा का गणपति को विसर्जन करते हैं, तो परंपरा को मिटाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं संकोच कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पूछ रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ ना विसर्जन। तो सबके आंखों में आंसू आए, वो घर में बुलाया और उसी ने गणपति को उठाया, वो ले गया, और टेम्पो भी लेके आया था, वो पिताजी का बिजनेस था तो उसने ले लिया अपने हाथ में, टेम्पो भी लेके आया था, फिर खुद ने सब लोग कराए उस टेम्पो में, और हर साल की तरह वैसे ही विसर्जन करते आए। कहानियां समाप्त होती है। तो उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव में लोग जुड़ जाते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, लोगों के रिश्ते जुड़ जाते हैं। उत्सव मनुष्य समाज को साथ में लाने के लिए है। फिर जब जब वो रिश्ता बन जाता है ना, तो उसमें जात पात धर्म कोई बीच में नहीं आता है उसके। ये सभी बड़े लोगों ने जो ना, बड़े जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ना, उन्होंने ये सब धर्म भेद, जाति भेद, सब भेद करके रखा है, ताकि लोग लड़ते रहें और उसमें अपना जो रोटी पकाते रहें, अपना जो भी कुछ कपटी हेतु है वो पूरा करते रहें, चाहे वोट का खेल हो या पैसे का खेल हो, कुछ भी खेल हो, खुद का स्वार्थ बनता रहे। इसलिए बड़े लोगों ने ऐसा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, काड़ी लगा के रखा है, ताकि आग जलती रहे और हमारा काम बनता रहे। लेकिन सामान्य आदमी इस भाव में नहीं रहता है कभी भी। हम लोग बचपन में भी जब बिल्डिंग में रह रहे थे, सब लोग थे उसके अंदर, हर प्रकार के लोग थे, और हम लोग सब सबके घर में दिवाली का फराल भेजते थे, मेरा काम ही था वो बचपन में। दिवाली का दिन आ गया तो फिर मैं एक घर में 17 नंबर में, फिर 18 नंबर में, फिर 19 नंबर में, 20 नंबर में, सब में थाली लेके आने का। फिर कुछ देर बाद वो सब लोग हमारे घर पे आएंगे, तो 28 हमारे 14 थे पहले माले पे, तो 14 थाली आती थी हमारे घर पे, और दो घर के नहीं आती थी क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। फिर क्रिसमस में उनकी थाली हमारे घर में आती थी, हमारे उनके घर में दिवाली की थाली जाती थी, उनका क्रिसमस में केक आता था, पेरू की बर्फी आती थी उनकी स्पेशल क्रिसमस वाली। दिस इज फेस्टिवल। अभी हमारा ओणम का उत्सव है, आप यू आर केरलाइट, हाँ, सच अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। उसका उसका बेसिस क्या है, सब लोग को घर पे बुलाना है खाने के लिए, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, एवरीबडी, सबको खिलाना है प्रेम से, भगवान को देना है और सबको देना है। और इतनी बढ़िया बात है कि वो मुसलमान लोग भी मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मनाते हैं, हिंदू लोग भी मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं उसको, जितने लोग केरला में रहे सब लोग मनाते हैं, और सब लोग सब लोग को खिलाते हैं, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर। है तो विष्णु का उत्सव वो, लेकिन सब लोग मनाते हैं, क्योंकि जब वो बनाना शुरू किया होगा, तो जब शुरू किया हिंदू के ऋषियों ने, तो इतना लोगों को प्रेम दिया होगा कि सब लोग ने उस उत्सव को अपनाया, और आज सबका उत्सव हो गया वो, खाली हिंदुओं का नहीं है, क्रिश्चियन लोग भी उतना ही प्रेम से उसको मनाते हैं ओणम। तो ये रिश्ता जो है ना लोगों का, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे जीवन में कैसा ना, जब पैसा आता है, मुझे अभी भी याद है जो जो गरीब लोग होते हैं ना, बहुत दिलदार होते हैं, कभी भी उनके जाके बैठ के घर में आप खा सकते खाना, वो भी आपको प्रेम से बुलाएंगे, आप भी उनके घर में प्रेम से जाएंगे, रुखी सुखी खाएंगे, बैठ के ज़मीन पर टाट पर बैठ के खाएंगे, कोई पंच पकवान नहीं है, अरे वो साउथ इंडियन तो उनकी इडली खाएंगे, ये महाराष्ट्र हैं तो उनकी पूरणपोली खाएंगे, ऐसे राह देखेंगे, अरे काके के घर में पूरणपोली खाने जाना है होली के दिन, फिर वो बोलेंगे इनके घर में संडे को डोसा खाने जाना है। हमारे घर में संडे को सब लोग आते थे, तो पता था उनको हमारे घर में संडे को मेरी मम्मी डोसा बनाती थी, तो सब लोग आ जाते थे, नेबर पर पड़ोसी लोग। लेकिन जैसे ही पैसा आता है ना, फिर लोग संकोच करने लगते हैं, बुलाते भी नहीं हैं और हम जाते भी नहीं हैं। और ज़्यादा बड़ा हो गया आदमी, पद पद से पोस्ट बड़ी हो गई उसकी, पैसा ज़्यादा हो गया, वो गाड़ियाँ आ गई, तो नहीं होता है, वो बंद हो जाता है। भाई बहन कैसे होते हैं, बचपन में सबसे झगड़ा करते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, प्यार करते हैं, एक साथ सोते हैं, गले ऐसे मिलकर सो जाते हैं, और वही भाई बहन थोड़े बड़े हो गए दुश्मन हो जाते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते एक जगह पर, साथ में खाना नहीं खा सकते, बात करना जाना है बस, घर पे नहीं आऊँगा मैं, उधर आऊँगा, तू भी गार्डन में आ जाना, वहाँ डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ प्राप्त करने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, उनको पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बहुत चलने में तकलीफ हो जाए तो गाड़ी चाहिए, और एक एक कमरे में टीवी चाहिए, पहले एक टीवी आएगा बाद में बोलेगा नहीं हर एक कमरे में टीवी चाहिए ताकि मैं दूसरा देखूंगा आप दूसरा देखेंगे, हाँ इतना हम लोग सुविधा चाहते हैं ना, फैसिलिटी चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये फैसिलिटी आते हैं ना, तो क्या होता है, आदमी लोग दूर चले जाते हैं, है कि नहीं। एक जोक है, ऐसा जोक, एक बड़ा बंगला है उसमें 8 कमरे हैं, वो घर में 8 लोग हैं, अपने अपने कमरे में हैं, सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे बैठे कुछ कर रहे हैं, कोई टीवी पे कुछ देख रहा है, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, तो फिर नीचे से मम्मी व्हाट्सएप करती है, टाइम फॉर डिनर प्लीज कम, सब लोग देते हैं हाँ ठीक है, कुछ लोग आते ही नहीं है, एक आध दो आते हैं खा के चले जाते हैं, फिर कुछ देर बाद वो अपना प्रोग्राम खत्म करके बाद में आ जाते हैं। लेकिन सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, कौन कहाँ जा रहा है पता नहीं किसी, सबका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है, शाम को आओगे नहीं आओगे उसको व्हाट्सएप पे, फ़ोन नहीं कर सकते। अभी फ़ोन करने में और व्हाट्सएप करने में क्या अंतर है बताइए, बताइए हम लोग क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। व्हाट्सएप में भावना नहीं है, अब कितना भी उसमें वो हंसता चेहरा डालो, रोता हुआ चेहरा डालो, हाँ आंसू दिखाओ, ऐसा एक ऐसा दिखाओ सब दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फ़ोन करोगे तो बात करने में जो आपको होगा ना वो नहीं आएगा उसके अंदर फीलिंग आपको, और वो भी मेरे विचार से क्या कहते हैं उसको, साइंस का एडवांसमेंट है लेकिन इंसानियत के हिस्से से वो अधोगति है, इट्स अ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मुझे याद है मेरे भाइयों की शादी जब हुई तो हमने सबको घर में जाके इन्विटेशन दिया था, एक भाई की नहीं 4 भाई की शादी मेरे ऊपर हुई, सबके लिए सबके घर में जाके ऐसा एक फेस्टिवल था वो, मतलब 15-20 दिन महीना भर जाते रहना है, सबके घर में एक एक मिठाई का टुकड़ा खा के ऐसा पेट भर के घर पे आना है, बोले क्या अभी खाना नहीं खाना है, हर एक घर में कुछ ना कुछ दे दिया, तो सबके घर में खाते 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 क्या खाएंगे आके घर पे, ऐसे बहुत दिन तक करना है, 300 लोगों का लिस्ट है, 400 लोगों का लिस्ट है। अभी क्या करते लोग, पोस्ट से भेज दिया है और ज़रूर आना है आपको, फिर वो अभी वो भी बंद हो गया है, अभी व्हाट्सएप पे ही वो पत्रिका भेजते हैं और कहते हैं कंसीडर दिस एज अ पर्सनल इनविटेशन, वो भी ज़बरदस्ती है समझने का वो, कि आप पर्सनली बुला रहे, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट इज पर्सनल बट यू आर मेकिंग मी फोर्सिंग दैट एक्सेप्ट इट एज पर्सनल, है ना, एक लाइन लिखूंगा और 100 लोग के भेज दूंगा बोलेगा एक्सेप्ट एज पर्सनल, ये सब क्या है एक्चुअली, ये सारे जो है ना उत्सव के कंसेप्ट के खिलाफ है सब, ये सारे जितनी विधियां हैं व्हाट्सएप है फेसबुक है फलाना है क्या क्या है सब कुछ करते हैं, वो सब इंसानों को दूर करने का तरीका है, पास लाने का तरीका नहीं है। और उत्सव का मीनिंग क्या है, सब लोगों को साथ में लाना है, और आजकल लोगों को साथ में फिजिकली आने में बहुत तकलीफ है, टाइम नहीं उनको, लाइक भी कौन जाएगा वो गणपति में जाके, तो क्या होगा गणपति में जाके, 2 घंटा बैठेंगे यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, कुछ खाना खाएंगे, निकल, पूरा दिन चला गया मेरा, कितना काम मेरा पेंडिंग है। एक गणपति का दिन में 8 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। क्या करना है, वो ससुर उसको मिलना है, सासू को मिलना है, वहाँ की बातें करनी, कैसे हो, पैर कैसा है अभी, वो ऑपरेशन हुआ था उसका, उस दिन उसका कैसा है अभी, थोड़ा इंक्वायरी किया, क्या बेकार की बात है, वो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं ना, ऐसा लोग सोचते हैं आजकल। लेकिन भारत का जो संस्कृति है उसमें जो उत्सव है उसका पर्पज ही है कि आप सब कुछ छोड़ के साथ में आना है आपको और टाइम बिताना है। चाहे लगेगा आपको कि बेफजूल की बातों में आप टाइम डाल रहे हो, लेकिन वो बेफजूल की बातें नहीं होती है, वो बेफजूल की बातें करते 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 जो रिश्ते बनते हैं ना वो बहुत लंबे तक काम आते हैं। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी वेल्थ क्या है बताइए आप, सबसे बड़ी वेल्थ तो कभी भी काम आ सकती है हमको, पैसा, रिलेशनशिप, रिश्ते। आपका बहुत पैसा होगा, कोई फ्रेंड नहीं आपका, तो पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप एंड में, वो भी आपको ऐसा पड़े होंगे ना बिस्तर पे, तो पैसा निकालने के लिए भी कोई चाहिए साथ में आपको, हाँ वाइफ चाहिए या तो हस्बैंड चाहिए या तो बच्चा चाहिए, कि आपको आपका अकाउंट ऑपरेट करके आपके इलाज के लिए पैसा ला सकता है वो। लेकिन आप अकेले हो, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं, किसका सबके साथ झगड़ा है और आप ऐसे सीरियस पड़े हो, बहुत पैसा है आपके पास, वो आप ला भी सकते नहीं हो। डॉक्टर बोलेंगे अरे तुम्हारा, हमको हमारा हॉस्पिटल का रूल है एवरीडे हमको बिल बताना पड़ता है। बोले करूँ क्या, मैं खुद ही गैस पर हूँ, पैसा कौन लाएगा, आप ठीक करो सब पैसा दे दूंगा आपको मैं, तो क्या कमी है उसके अंदर, सब कुछ है उसके पास, एवरी सिंगल थिंग इज देयर, बट रिश्ते नहीं है, प्रेम करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है उसके ऊपर। वो कितनी दुख भरी कहानी है माइकल जैक्सन की, हाँ कितना अमीर था पता है, वो दुनिया का सबसे कीमती आइलैंड उसके नाम पे था, 75 एकर्स का, पूरे आइलैंड में अकेले रहता था वो। सोचिए आप कितना दुर्भाग्य व्यक्ति है, इतने बड़े आइलैंड में अकेले रहता था, और बाकी सब जो थे वो सब उसके नौकर थे, मतलब अपना कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ठीक है झाड़ू मारना का काम है, झाड़ू मारना है, पैसे लेके जाना है बस, कोई साहब को क्या हो रहा है क्या मालूम। तो उसी उसी में से एक व्यक्ति ने उसका खून कर दिया, उसको दवाई डॉक्टर के रूप में दवाई देके उसको फिनिश कर दिया, इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन इतना ड्रग खाता था वो, इतना दुखी और फ्रस्ट्रेटेड और क्या कहें, क्या क्या मानसिक बीमारी थी उसको। क्यों थी वो सब, जब रिश्ते नहीं होते हैं तो मानसिक बीमारी होती है, लोनलीनेस। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, लोनलीनेस। जस्ट इमेजिन, घर में भी सब लोग हैं लेकिन फिर भी वो रिश्तों के हिसाब से अपने आप को अकेला महसूस करता है वो। हाँ उसके बीवी भी है, उसका बच्चा भी है, उसके पास सब कुछ है, बहू भी है, पोता भी है, नाम के लिए सब कागज में बहुत नंबर है पूरा, लेकिन एक का भी दिल का रिश्ता नहीं है कि किसी को मैं हृदय से पुकार सकता हूँ, अगर डिफिकल्टी आए तो आंटी को बुला सकता हूँ, वो जरूर भाग के आएगी मेरे लिए, ऐसा विश्वास नहीं है, और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है विश्वास दिलाने वाला। तो आदमी अभी सबके बीच में रहकर भी अकेला है, इसलिए सबके बीच में रहते हुए भी उसके वारिस बहुत हैं, नॉमिनीज उसके विल में है, सब जगह पर अकाउंट में है, FD में है, उसके पॉलिसी में है, सब जगह पर उसके नॉमिनी लिखे हुए हैं बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला है, और अकेलापन का अनुभव भी करता है और डिप्रेशन में जाता है, डॉक्टर के पास जाके दवा लेता है, ठीक नहीं होता है उसका डिप्रेशन का कारण, ठीक नहीं तो डिप्रेशन ठीक कैसे होगा, ऊपर से मलम पट्टी करके फायदा क्या है, और साइकेट्रिस्ट आपको गोली दे सकता है लेकिन आपको रिश्ते कैसे बनाने हैं वो सिखा नहीं सकता हूँ, वो तो आपको ही करना है। तो ये जो इंसान के रिश्ते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये हमारा सबसे बड़ी दौलत है हमारी, ये क्योंकि तो आप फटी फकीर चंद भी होंगे ना आप, तो भी आपके रिश्ते आपको काम आएंगे। कितने लोग रोएंगे जब मैं जाऊंगा, वो आपकी वेल्थ है। कितने लोग आएंगे जब आपको कष्ट होगा, ये आपकी वेल्थ है। इसलिए संत लोग सबसे वेल्दी रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, एक पैसा भी नहीं होता है उनको, ना प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती है, ना घर होता है, 2 जोड़ी कपड़ा है वो भी किसी ने दिया होता है, सब दान धर्म पे जीते हैं, कुछ उनके पास नहीं है, लेकिन भगवान है उनके पास, इसलिए आम जनता उनको चिपके रहती है प्रेम से। कितनी अभी हमारे गुरुदेव के पास क्या है, हमारे गुरु सन्यासी है, तड़पते हैं उनके लिए, एक मिनट भी मिलेगा उनका ना संग मिलेगा तो लोग, जैसे कल मुझे फोन आया था तो गुरुदेव का, तो मैंने डांस किया रूम में आउट ऑफ हैप्पीनेस कि मुझे गुरुदेव का फोन आया राधा अष्टमी के दिन, मुझे गुरुदेव ने फोन किया, इस बात से मैं रूम में अकेला था तो मैं खूब डांस किया रूम में तो ये उनकी वेल्थ है। ऐसे बहुत सारे लोग उन पर प्रेम करते हैं, वो उन पर प्रेम करते हैं, कितनी भी दूर रहेंगे तो प्रेम का रिश्ता बना रहता है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करते ही ऐसे रिश्ते बन जाते हैं ना कि आप परिवार को भी समझते कि परिवार के लोग भी इतना प्रेम नहीं करते, और है भी, हमारा जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे उत्सव मनाते हैं, मंदिर में बार बार मिलते हैं, हमारा कई सालों का रिश्ता हो गया है, 35 साल से हम लोग भक्त लोग एकत्र मंदिर में आते हैं, और भगवान का उत्सव तो बहाना है, लेकिन भगवान का उत्सव होने के बाद भी 5-6 घंटा मंदिर में रहते, क्या करते हैं? उत्सव तो हो गया, अभी अभिषेक हो गया, आरती हो गई, प्रवचन हो गया, प्रसाद भी हो गया, तो हम बोलते अरे मम्मी 5 बजे फेस्टिवल हो गया ना, क्या कर रहे हैं? 8:30 बज गए, अभी क्या कर रहे हो? सब लोग को मिल रहे हैं, सबको दिल भर के मिलेंगे, जैसे मैं हूँ पति हूँ तो नीचे वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, मेरे सबको मुलाकात मेरे हो गई है, और मैं गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट में बैठ गया हूँ, और सुमित्रा जी हमारे अभी भी मिल रही लोगों को, अभी भी उनका दिल नहीं भरा है, तो हम लोग बैठे हैं शांति से माला लेकर जप कर रहे हैं, और श्रीमती जी से भी आपकी सबको मिल के आराम से आएंगे बाद में। लेकिन वो जो समय है ना, आपको लगेगा कितना समय बर्बाद करते हैं, अभी हो गया ना फेस्टिवल, चलो ना घर पे, अभी क्या है लेकिन वो जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना टाइम का, वो एक तरफ से वेस्ट लग रहा है आपको, इसे यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, देखो मेरे को खड़ा करके रखा है उधर, लेकिन जब कठिन समय आएगा ना तो जिनके साथ वो समय बिताया था ना वो सब लोग बाकी आएंगे, तभी नहीं बोलेंगे कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, है उनका समय बर्बाद हो रहा है कि नहीं आपकी सेवा में, उनका तो नुकसान हो रहा है, उनका कीमती समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन तभी वो सोच नहीं रहे हैं कि मैं मेरा कीमती समय इनके लिए वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सोच रहे हूँ, यही अल्टीमेटली है। ऐसे कितने रिश्ते हमने बनाए हैं दुनिया में, वो हमारा दौलत है जो हमको एंड तक काम आएगा, रोने की जरूरत नहीं मरने के बाद में, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मदद की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि मरने के बाद कोई रो रहा है नहीं रो रहा है क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो चले गए ना अभी, हम लोग तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी में जब कष्ट होता है तब तुम्हारे इर्द गिर्द कितने लोग रहते हैं तो उसमें आपकी वेल्थ क्या है पता चलता है। जैसे हमारे ना एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम है श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद जी के एकदम विशेष भक्त थे वो, बहुत पहले जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया था तभी ये भक्त जुड़ गए थे, और कोई नहीं थे शिष्य उस समय, तो ये सेक्रेटरी बनकर घूमते थे उनके साथ सब जगह पर। आपको पानी चाहिए? तो प्रभुपाद जी फिर चले गए, और अभी प्रभुपाद जाके भी बहुत साल हो गए, अभी कितने साल हो गए, 41 ईयर्स हो गए, तो अभी वो भी खुद 70 ईयर्स के हो गए हैं, कुछ 75 ईयर्स के हो गए हैं। तो कुछ 7 साल पहले ना उनको लीवर खराब हो गया पूरा, उनका कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया लीवर, और लीवर अभी उनका रिप्लेस करने का बताया गया उनको, लीवर चेंज करना है उनका, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है वो, बिग ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के लिए आपके पास पैसा बहुत है लेकिन लीवर नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे पैसा लेकर, पैसा का लीवर बना के लगाएंगे यहाँ पर, सोच सकते ना, इतना पैसा मेरे पास है मैं 4 लीवर बना सकता हूँ पैसे के, ऐसे लगा के नोट, तो उससे काम चलेगा क्या? तो ये हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने भी बोला कि आपका लीवर चेंज करना पड़ेगा, डोनर ढूंढ के निकालो, तो ना उन्होंने फिर अपने कुछ भक्तों को फ्रेंड फोन को फोन किया कि मुझे लीवर कोई दे सकता है क्या, तो ना उनको ना 50 फोन आए, तो उन्होंने हर एक 50 फोन वाले को हॉस्पिटल के डॉक्टर का फोन दिया जिसको ये देना था इन्फॉर्मेशन कि डोनर रेडी है, तो डोनर को किसको कॉन्टैक्ट करना है, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, तो जिनको जिनका फोन आया उसने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट दिया, डॉक्टर को 50 फोन आए कि वो सैम जो आपका पेशेंट है मिस्टर सैम उसके लिए हम लीवर देना चाहते हैं, डॉक्टर पागल हो गया, अपना केबिन छोड़ के वो वार्ड में आ गया। बोलता है, मिस्टर सैम कौन हो आप, कौन हो आप? तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं सैम हूँ, आई एम सैम, व्हाई आर आस्किंग हु एम आई? नहीं डॉक्टर, ऐसे तो चेहरे पे आश्चर्य है बहुत, और वो ना जैसे कोई प्रधानमंत्री को देखता होगा ना, प्रधानमंत्री या अमेरिका का अध्यक्ष से मिलेगा तो कैसे देखेगा, अरे अमेरिका के अध्यक्ष आ गए, ऐसे उसका भाव था चेहरे पे। बार बार पूछ रहा है, हु आर यू? तो आई एम सैम। क्यों पूछ रहे ऐसा? आप जानते हो आपके लिए 50 लोगों ने फोन किया मुझे लिवर देने के लिए। अच्छा, कौन हो आप? पीछे वापस पूछ रहे हो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कहते हमारे पास ना बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स जो बिलियनियर्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो बिलियनियर्स हैं, कोई अमेरिका के मिनिस्टर्स जो करोड़ों अरबोंपति हैं, और फिल्म स्टार्स, रॉक स्टार्स जिनके पास में टनों से पैसा है, ऐसे लोग भी भर्ती हुए हैं, एक भी कोई व्यक्ति उनको लीवर देने को तैयार नहीं है। करोड़ों फैंस हैं उनके, उनका गीत गीत कब शुरू होगा ना किधर टीवी पे, तो चिल्लाने वाले लोग हजारों लाखों मिलेंगे। इतनी आश्चर्य की बात है, माइकल जैक्सन जब इंडिया में आया था ना, तो माइकल जैक्सन ने अंधेरी में एक प्रोग्राम किया था, बड़े स्टेडियम में, इतना बिग स्टेडियम, हाँ उसमें क्या टिकट बिके थे, बाप रे कितने महंगे टिकट बिके थे, लाखों रुपए के, वो भी फिर भी फुल था, टिकट अवेलेबल है, ब्लैक में भी बेच रहे लोग लाखों रुपए के टिकट। और माइकल इसमें मतलब क्या क्या, माइकल जैक्सन ने ऐसे बीच में ऐसे हाथ आगे किया ऐसे, तो सारे लोग स्टेज पे भाग गए स्टेज की तरफ, और उसका हाथ का टच लेने के लिए ऐसे भाग रहे थे सब लोग, कई पता नहीं सैकड़ों लोगों ने हाथ लगाया होगा उसको, ऐसा उसने हाथ घुमाया तो बहुत लोगों ने उसको हाथ स्पर्श किया उसका, उसमें बहुत लड़कियां भी थी, बहुत लड़के भी थे, उन्होंने अपने हाथ धोए नहीं 7 दिन तक, क्योंकि इधर मेरे को माइकल जैक्सन ने हाथ लगाया था, तो ऐसा रखा था उसको 7 दिन तक। अभी आप बोलेंगे कितना पॉपुलर व्यक्ति है ये, लेकिन कितना भयंकर मृत्यु प्राप्त हुआ है उसको, एक व्यक्ति भी साथ में नहीं था उसके। तो ये सब क्या है, सब ढोंग है ये सब, ये फैनशिप है, इतना सारा फैंस है हमारे, लाखों रुपए, लाखों इतने लोग फॉलोअर्स है ट्विटर पे, फेसबुक के, कोई आएगा क्या आपके जब मरेगा तभी, कष्ट कष्ट होगा तभी कोई आएगा? आई एम योर ट्विटर फॉलोअर, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ऐसा कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो पूछ रहे आप कौन हो कि 50 लोगों ने फोन किया है फ्री में लेबर देने के लिए आपको, और जो होते हैं ना बिजनेसमैन अरबोंपति होते हैं, तो वो उनका वो डीलिंग होता है, डीलिंग, मैं आपका लेबर दूंगा कितने करोड़ दोगे मुझे आप, फिर वो डील करते हैं, ओके 5 करोड़, 6 करोड़, नहीं नहीं कम करो थोड़ा सा, फिर ओके 3.5 करोड़ में मान जाओ, तो आधा लेबर दे देगा आपको, और ऊपर से पूरा ऑपरेशन का खर्चा आप करेंगे, मैं तो खाली आके लेटूंगा, सारा मेरा खर्चा आपको करना है, वो निकालने वाला काम, हीलिंग वाला काम, मेरा इलाज, एंटीबायोटिक, मेरा हॉस्पिटल स्टे, वो सब कुछ वो करेंगे, ऊपर से आपको 3.5 करोड़ देंगे। मैं ऐसा छोटा सा फिगर बोल रहा हूँ, बाय द वे बड़े फिगर में काम होता है वो, और इतना पैसा देने को तैयार होने के बाद भी कोई ऐसे धनी लोगों को मिलता नहीं है डोनर, और आपके लिए फ्री, मैंने कन्फर्म किया हर आदमी, आप यू वांट टू गिव फ्री? यस फ्री। कौन हो आप? बाद में उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, दैट इज माई वेल्थ, मैं तो गरीब हूँ ऐसे, तभी तो श्याम सुंदर प्रभु जी बहुत धनवान नहीं थे, वो बहुत बुढ़े हो चुके थे, अभी 75 आदमी में कहाँ से पैसा कमाएगा वो, और कोई अरबोंपति के बेटे नहीं थे वो, हरे कृष्ण में ज्वाइन हो गए थे जवानी में, परिवार छोड़ के, सब वसीयत सब खत्म हो गई उनकी, हाँ पिताजी को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, तो कौन वसीयत देगा आपको, वसीयत में भी कुछ नहीं, प्रभुपाद जी को शरणागति सब स्वीकार कर दिया उन्होंने, अभी पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, और लीवर भी बिगड़ गया है, अभी डॉक्टर बोला लीवर बदली करना है, तो 50 लोग तैयार है देने के लिए, दिस इज वेल्थ, इसको वेल्थ कहते हैं। लेना आपको एक का ही लीवर है, 49 लोगों को ना बोलना है आपको, एक का ही लिया, सबका अंदर नहीं लेगा ना, एक ही लेबर जगह, एक ही लेबर लेना है, ऐसा नहीं कि 100 पीस करके 100 पीस लगा के ज्वाइन करना है आपको, लेना तो एक ही है। तो ये वेल्थ हमको ये जीवन में कमाना है, सबको ध्यान रखना है, इसी से संतुष्टि प्राप्त होती है, इसी से आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो आप आनंद रह सकते हो, अगर आपके पास रिश्ते हैं तो। हमारे मंदिर में ना एक भक्त है, इंजीनियर थे वो बहुत, अभी उनकी 80 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 50 साल पे उनके 19 ऑपरेशन हो गए थे, किसी किसी कारण, कान के, इसके, उसके, आंखों के, 50 ईयर्स के पहले उनके 19 ऑपरेशन हो गए, उनको रिटायर होना पड़ा 50 साल की उम्र। वो भी कैसे बैंकक्रप्ट होके वो रिटायर हो गए, मतलब इतना खर्चा किया शरीर के ऊपर और आगे काम करने के लायक भी रहने गए। लेकिन आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 50 साल से अभी 80 साल तक उनकी एक मदर भी थी जो भी 95 ईयर्स की थी, अभी अभी गुजर गई हो। तो ये बेचारे 75 ईयर्स के, मम्मी 95 ईयर्स की, ये घर पे ये बुढ़े और उनके 50 बीमारियां और 50 साल की उम्र से नो जॉब नो मनी। लेकिन बच्चा, आपको मैं बताता हूँ कितनी खुशी की बात है, पिछले 30 साल से भक्त लोग ही उनका घर चला रहे हैं, ऑल डिवोटीज टुगेदर। और उन्होंने भी कैसा किया है, अपना घर जो है ना वो विल विल लिखे रखा है कि जब मैं मरूंगा तो हमारे मंदिर के नाम मेरा घर हो जाएगा, क्योंकि मंदिर के भक्तों ने मुझे संभाला है, तो मेरा सब कुछ मंदिर का है। वाइफ ने भी साइन कर दिया है, उसने भी साइन कर दिया है, ये दोनों वेट कर रहे हैं, जब मृत्यु होगी तो घर मंदिर को दिया जाएगा। उनके पास कुछ भी नहीं है। कैन यू बिलीव दिस, कि कुछ भी नहीं है लेकिन 35 साल से आप आराम से जी रहे हो, यात्रा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सब कर रहे हो, और इतने इतना गरीब आदमी है लेकिन इतना प्रेम है लोगों का उनके ऊपर। वो जाएंगे ऐसे बोलेंगे हमारा पंडरपुर का कैंप है, वो गोदाम में जाएंगे, किसी को बोलेंगे 10 गोनी दे दो गेहूँ, तुरंत 10 गोनी दे देंगे उनको, और पंडरपुर कैंप में उसको दान करेंगे। फिर उसके दुकान में जाएंगे 10 गोनी चावल दे दो, तो वो दे देगा उनको। फिर वो दिसंबर में जाएंगे, ये गीता है, ये 50 गीता मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको लोगों को देना है, बस पैसे मुझे दो, आपको लोगों को बेचना है, वो मेरा कोटा है, इतना पूरा करना है। इस दुकान में जाएंगे बोलेंगे आप 10 ले लो, आप 25 ले लो, आप 50 ले लो, मुझे अभी शक्ति नहीं चलने के लिए गीता बेचने के लिए, लेकिन मेरा कोटा मुझे पूरा करना है, आप करो उसको। हाँ, लोग सब ले रहे हैं, उसको पैसा दे के ले रहे हैं गीता 50, वो दुकान में बैठ के जो आया ना, या आधी बोरी चावल लेगा, इसको एक गीता गिफ्ट दे रहे हो। कितनी बड़ी वेल्थ है देखो आप, रिश्ते हैं बहुत प्रेम के, उनमें उनसे उस व्यक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं आपको, उसको देना ही है आपको, उसपे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, लेकिन जो प्रेम वो दे रहा है उसके बदले में आप कुछ भी देने को तैयार हो उसको। बीमार हो गए तो इलाज करने को तैयार हो, और रोज का खर्चा है तो देने को तैयार हो, यात्रा है तो एक व्यक्ति टिकट निकाल देगा, एक व्यक्ति यात्रा का कॉन्ट्रीब्यूशन भर देगा, एक व्यक्ति रूम का उसके लिए बुकिंग करेगा, एक व्यक्ति खुद ले जाएगा सामान उठा के उसको स्टेशन पे, वो यात्रा करा के लेके आएगा। ऐसे भी जिंदगी हो सकती है। तो मैं उनको पंडरपुर कैंप में एक बार मिला, मैंने कहा कि आप कैसा लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक, वो कहते हैं भगवान है, इसके बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे, हाँ गॉड इज देयर, इसके ऊपर डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं, आई एम फीलिंग गॉड इज देयर एवरी मोमेंट। तो मैं जिंदा कैसे हूँ 25 साल से, हाउ विल आई हाउ आई एम लिविंग, इतना बीमार आदमी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इतने आराम से जी रहा हूँ मैं, और भी आगे भी जीऊँगा। कितनी बड़ी फीलिंग है, डिफिकल्टी आती है हमको लाइफ में, लेकिन हम किस भरोसे जीते हैं, केवल एक रिश्तों के भरोसे पे जी सकते हैं। जो रिश्ते आज खत्म होते जा रहे हैं, किसी को रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, ना माँ को इंटरेस्ट बेटे में है, ना बेटे को माँ में इंटरेस्ट है, पहले होता है माँ को अपने बेटे में, लेकिन बेटा ही माँ को बाद में हरी बोल कर देता है, देखते नहीं कोई, इतना दुख होता है उनको, पूरा जीवन उनके लिए बिताया हम लोग ने, लेकिन वो हमको देखते नहीं है। एक हमारे अंधेरे में ना एक कॉलोनी है, आपको बहुत सुनकर आश्चर्य होगा, उसका नाम है राम भरोसे कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम ही बिल्डिंग का राम भरोसे, अंधेरी के प्राइम लोकेशन पे है, बहुत बड़ी कॉलोनी, 450 फ्लैट है उसके अंदर, ह्यूज फ्लैट्स पुराने जमाने के, क्या बताऊं आपको, वो घर में, वो पूरे सोसाइटी में केवल बुढ़े लोग रहते हैं जिनकी उम्र 70-75 की है, ओल्ड मदर एंड फादर, एवरीबडी ओल्ड मदर एंड फादर रहते हैं उसमें, और कोई रहता ही नहीं उसमें, क्योंकि सबके जितने बच्चे हैं वो सब अमेरिका में है, सब लोग पैसा भेजते हैं, और माँ बोलती तुम कब आओगे, मुझे तो टाइम नहीं आने के लिए, आपको कौन सा डॉक्टर को दिखाना है बताओ, कोई चिंता मत करना, बेस्ट बॉम्बे का डॉक्टर कितना महंगा वाला हो मैं पैसा भेजूंगा, आपको डॉक्टर को दिखाना है, बोले तुम कब आओगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। उनको क्या है ना, वो बहाना होता है कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, बोलने का बहाना क्यों होता है कि तू आ जाओ कम से कम उस बहाने, मैं मिलूंगी आपसे, इसलिए बोलते हैं वो। लेकिन वो क्या करते हैं, पैर में दुख रहा है ऑर्थोपेडिक को दिखाओ, डॉक्टर ढोलकिया को दिखाओ, मैं भी फोन करता हूँ उसको यहाँ से, एम्बुलेंस करके आपको भेज गाड़ी भेजता हूँ, और गाड़ी से आप जाइए और उनको दिखा के लाइए, और क्या बोलेंगे इलाज वो करना है, मैं यहाँ से पैसे भेज दूंगा। वो बोल रही है बेटा, मन में बोल रही है, पैर का छोड़ो बेटा, पैर तो क्या है, टूटना ही एक दिन, आपसे मिलना था इसलिए मैंने बता रही थी आपको पैर दुख रहा है करके। क्या सोच सकते हैं आप, सारे बिल्डिंग के सारे बच्चे, एक्चुअली फैक्ट है, मैं आपको एग्जैग्रेशन बता नहीं रहा हूँ, उसमें से एक एक जो बच्चा है एक फैमिली का, वो हमारे डॉक्टर है, भक्ति विधान में काम करते हैं, वो अमेरिका में नहीं है, वो भक्ति विधान में काम करते हैं, वो अंधेरे में है, मीरा रोड में, बस बाकी सारे परिवार के सब लड़के लड़कियाँ अमेरिका में, कोई काम नहीं आने वाला, बहुत प्रेम है उनका, लेकिन उस समय पर कोई नहीं आने वाला है, वो जाएगा तभी 3 दिन के बाद में पहुंचेगा, वो फ्लाइट पकड़ के आएगा तभी 3 दिन मॉर्चुरी में बॉडी रहेगी, फ्रिज में। दिस इज व्हाट इज लाइफ टुडे। इसलिए हमारे कल्चर जो गणपति उत्सव है, दिवाली है, उसको भूलना नहीं चाहिए हमको। भारत अभी भी भारत है, हाँ, इतने लोगों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, मुसलमानों ने किया, क्रिश्चियनों ने किया, इसने किया, पुर्तगीज लोगों ने किया, लेकिन भारत चेंज नहीं हुआ, अभी भी गणपति चल रहा है भारत में। अभी नवरात्रि चल रही है, क्योंकि नींव है ना, नींव, निटिंग, निटिंग जो है ना, वो बंधन जो है ना अंदर का, बहुत स्ट्रांग है वो, लोग बाहर के लोग अगर आके भी उसको उतना तोड़ नहीं सके, थोड़ा सा तोड़ दिया लोगों को, लेकिन देखो इंडोनेशिया में गए तो वो कंट्री को मुसलमान बना दिया, मलेशिया कंट्री मुसलमान हो गई, ये कंट्री क्रिश्चियन हो गई, वो कंट्री हो गई, कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं था उनका। हमारा कल्चर आज भी इतना आक्रमण हुआ लेकिन टूट नहीं गया कल्चर पूरा, अभी भी चल रहा है। राधाष्टमी हुई कल, आप जाइए बरसाने में, क्या लोग ऐसे गरीब दिखने वाले, काले काले रंग के, कोई स्वरूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ पोजीशन नहीं, से खटीचर लोग ऐसे, लेकिन क्या गाते हैं प्रेम से राधा रानी के लिए, बाप रे, आप देख के हैरान हो जाओगे उनको। आमतौर पर आप जो ऐसा जाएगा ना आदमी, आप उसको ढूंढ के भी देखेंगे नहीं, लेकिन जब वो बैठ के वहां पर राधा रानी के लिए उत्सव में गाता है ना, तो आप दंग रह जाओगे, बाप रे क्या भक्ति है इनके अंदर, क्या डिवोशन है, कैसे ये डिवोशन वो मोहम्मद गजनी और औरंगजेब तोड़ सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, इतना गहराई में इनका कल्चर डिवोशन है, वो क्या आके मंदिर तोड़ेगा, मूर्ति तोड़ेगा, पिलर तोड़ देगा, दिल का अंदर जो भाव है वो तोड़ेगा कैसे, वो हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमारे भारत को एक संदर रखने का ये नींव है, हमारी पावर है, अदृश्य पावर है, वो हमारा धार्मिक कल्चर जो है, वो भारत भूमि को अभी भी एकत्र रखा हुआ है उसने, धीरे धीरे अभी वो उसके खपचे उड़ रहे हैं साइड साइड से, लेकिन नींव बहुत मजबूत है उसकी, और हम लोग अगर इस चीज़ को समझेंगे और हमारे उत्सवों को बड़े प्रेम से मनाएंगे, तो हमारा भी जो छोटा मोटा परिवार है वो भी ऐसा मजबूत रहेगा एक दूसरे के साथ में। एक तो भगवान के नाम पे आप एकत्र हो सकते हो, या तो माँ बाप के नाम से एकत्र हो सकते हो, कहे मम्मी का बर्थडे है, पिताजी का बर्थडे है, तो आजकल बोलते हैं कि, बताऊँ क्या बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि जब मौत होगी तब इकट्ठा होते हैं, तब तक नहीं होते, बीमार है ना, ठीक है, कैसे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन डेथ हो गई तो क्या करने का, अभी फिर जाना ही पड़ेगा मैयत में, तो जो माता पिता वो बोलते हैं, हाँ अभी तो तुम लोग मेरे मौत के बाद ही आओगे ना, तो अभी तो आपको टाइम नहीं है, ये हमारी शोकांतिका है, ट्रेजेडी ऑफ लाइफ है, रिश्तों का ये स्थिति है आज का, कि लोग डेथ पे ही आते हैं, और डेथ पे सब परिवार आते हैं, सब लोग ऐसे, आप 15 साल के बाद मिल रहे हो, आप 20 साल के बाद मिल रहे हो, आप 10 साल के बाद मिल रहे हो, आपके आप बच्चे थे, अभी आप अपने हाथ में बच्चा लेके आए हो उसी मैयत में, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और फिर 12th में कोई आते नहीं है, क्योंकि वो 12th में कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई कानपुर चला गया, वो 12वें दिन तक वापस कैसे आएगा, वो नहीं आएगा, वो डेथ के लिए आएगा, और आगे जाके डेथ के लिए भी मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप पे, माय कंडोलेंसेस, RIP, फिनिश, जॉब इज डन। तो गणेश जी को धन्यवाद कीजिए, गणेश जी के बहाने बहुत लोग एकत्र होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम को, कुछ डांस लग करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन रखते हैं, कोई बच्चों लोग फैंसी ड्रेस करते हैं, वो मीनिंगलेस रहेगा मोस्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करने से आप लोग साथ में आते हो, गणेश जी के नाम के साथ में आते हो, गणेश जी का आपका रिश्ता बनता है और एक दूसरे का रिश्ता भी बन जाता है, बनता है ना, वैसे सत्संग का है। इसलिए हमारा, मैं तो कहूँगा आपको कि हम बहुत धनी लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, खून का रिश्ते वाला परिवार की बात मत करो, छोटा सा है, लेकिन जो भक्ति परिवार है वो बहुत बड़ा बड़ा है, कहाँ कहाँ हमारा रिश्ता है, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, हमको कहीं भी रेंट नहीं करना पड़ता रूम। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग वेट करते हैं अपने घर में बुलाने के लिए, और कोई ऐसा टेंशन नहीं हमको कि अमेरिका जाएंगे तो लंच डिनर का कैसा होगा। उधर वो टेंशन आता है किसको ना कहें इतने सारे आमंत्रण होते हैं, किसने कितने पूरे करेंगे, इसके घर में ब्रेकफास्ट, दो घर में ब्रेकफास्ट का इंतजाम है, दो घर में लंच का इन्विटेशन है, दो घर में डिनर का है, कैसे जा सकते हैं, एक ही पेट है भैया, तो चार चार पेट तो है नहीं। तो घर में तो शांति से खाते हैं, बाहर जाएंगे तो बाप रे इतना प्रेम है लोगों का। और कहीं दुनिया में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज के बगैर खाना किधर मिलेगा, अरे हर जगह प्रभुपाद जी के भक्त हैं, हर जगह प्रभुपाद जी का मंदिर है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आदिलाबाद जाओ, दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, कानपुर जाओ, उत्तरकाशी जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह भक्त हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारा कितना भाग्य है, देखो हम जा रहे हैं कहीं ट्रेन से, और अभी घर में से कितना भोजन लेके जाएंगे, तो एक बार का ले गए, गर्मी का मौसम है तो भी क्या करेंगे। तो रास्ता में लोग भक्त लोग प्रसाद ला के देते हैं, इस स्टेशन पे वो आके डिनर दे देगा, इस स्टेशन पे आके वो ब्रेकफास्ट दे देगा। यात्रा जा रही, यात्रा हमारी यात्रा जा रही है, 200 लोग बैठे हुए हैं। हमारी इच्छा है कि यात्रा करने के बाद इतना शुद्ध खाना खाने के बाद में अभी ट्रेन में वो ट्रेन का खाना नहीं खाना पड़ना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए उनको, लेकिन क्या करें, ये रोड पे हमारा कोई इंतजाम ही नहीं है। अचानक कोई भक्त बोलेगा मैं हूँ ना कानपुर में, वो कानपुर में मैं लंच पहुँचा दूंगा आपको, कितने लोग हैं, 200 लोग हैं ना, ठीक है पहुँचा दूंगा। तो कानपुर में प्रसाद आता है पैकेट सबके हाथ में, सब साथ यात्री लोग देख रहे हैं साथ वाले, अरे ये क्या हो रहा है, फीस्ट इज कमिंग इन द ट्रेन। ऊपर से गले मिल रहे हैं प्रेम से, थैंक यू प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु, अगली बार भी भूलना मत, इस बार इस रास्ते से आओगे हमको बोलना, अगली बार थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, इस बार अगली बार अच्छी तरह बता देना, बहुत बढ़िया खाना खिलाएंगे। और जो आप खा रहे हो, बाकी के यात्री देख रहे हैं, वाह क्या खा रहे हैं ट्रेन में, लंबे दिस इज वेल्थ लाइफ। उसका 200 रुपये पर प्लेट दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब यात्री लोग देंगे उसके लिए, लेकिन 200 रुपये उसका मूल्य नहीं है। वो उस समय आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए, उसका 500 रुपये में मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। और ये अमूल्य दौलत जो है ना, वो रिश्ते से मिलती है, रिलेशनशिप से मिलती है। इसलिए हमारा सारा रिलेशनशिप जो है उसका सेंटर कौन है, सेंटर भगवान कृष्ण है। इसलिए हमारे सारे रिश्ते मजबूत हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है वो भगवान के नींव पर बने हुए हैं, जो चिरंतन है, शाश्वत है, अमर है, परमानेंट है, वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है। परिवार के रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि तो कभी वो पैसे के ऊपर डिपेंड है, कभी इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये रिश्ता भगवान के ऊपर डिपेंड है, और भगवान वहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं, तो हमारा रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। मर भी जाएंगे तो गौलोक धाम में भी रिश्ता बना रहेगा, उधर भी मिलेंगे, हरि बोल, हम लोग पूना में थे मालूम है ना आपको ऐसे बोलेंगे, हाँ दिस इज वेल्थ ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।